تفسير سورة الحجرات مدنی سورت ہے، اس کے دو رکوع اور 18 آیات ہیں، کلمات کی تعداد 335 جبکہ حروف کی تعداد 1476 ہے۔ سورت کا نام آیت 4 کے فقرے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اس سے لیا گیا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ الحجرات آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری سورت الحجرات ہی کے گرد گھومتی ہے، بلکہ یہ اس کا علامتی نام ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورت الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، سورت الاخلاق۔ اس سورت میں جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام سکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد پیدا کرتی ہیں، جن سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دو باتیں خاص ہیں، ایک طرف جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب اور احترام، اور دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرنا، اور ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ امام ابو داؤد نے رحمت اللہ علیہ سنن میں روایت کیا کہ اوس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ حضرات قرآن حکیم کے حصے کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا تین تین سورتوں اور 5, 7, 9, 11 اور 13 سورتوں کے حصے متعین کر لیتے تھے، اور مفصلات کا ایک حصہ، مفصلات مفصل کی جمع ہے تفصیل کے لیے تن، اور مفصلات کا ایک حصہ جو الحجرات سے شروع ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ الحجرات کی بجائے جو قاف سے شروع ہوتا ہے، اس سے سورت الحجرات سے اگلی سورت سورت قاف ہے، تو آپ ایسے لکھ سکتی ہیں بریکٹ میں کہ جو سورت الحجرات یا سورت قاف سے شروع ہوتا ہے۔ میں پھر بتاتی ہوں، اور مفصلات کا ایک حصہ جو سورت الحجرات یا قاف سے شروع ہوتا ہے۔ تین سورتوں سے مراد البقرہ، آل عمران اور سورت نساء ہیں، اور 5 سے مراد المائدہ، الانعام، الاعراف اور انفال و برات ہے، اور 7 سے مراد سورت یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر اور سورت نحل ہیں، اور 9 سے مراد سورت سبحان اللہ جی، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، انبیاء، حج، مومنون اور فرقان ہیں، اور 11 سے مراد سورت شعراء، نمل، قصص، अंकबूत, रूम, लुकमान, अलिफ लाम सजदा, अहजाब, सबा, फातिर और सूरत यासीन हैं। और 13 से मुराद सूरत स्वाफात, स्वाद, अजुम्र, गाफिर, हामीम सजदा, हामीम ऐन सीन काफ, अज़ुख़रुफ़, दुखान, जासिया, अहकाफ, किताल, किताल का दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत फतह और हुजरात हैं और इनके बाद मुफस्सिलात हैं। और मुफस्सिलात की 3 किस्में हैं, ये मैं आपको और अगला बता रही हूं। आज जैसे सूरत अल हुजरात से शुरू है तो मुफस्सिलात की 3 किस्में हैं। पहली को कहते हैं तवाले मुफस्सल, तवाले मुफस्सल, हुजरात तानाजियात, नमाज फजर में पढ़ना मसनून है। दूसरी औसाते मुफस्सल, औसात से क्या है? वस्त, दरमियानी। औसाते मुफस्सल सूरत अबस से अशम्स तक जोहर और इशा में पढ़ना मसनून है। तीसरी किसारे मुफस्सल, किसार कहां से निकला? कसर। किसारे मुफस्सल सूरत दुहा से अन्नास तक मगरिब में पढ़ना मुस्तहब है। तो बहरहाल सूरत अल हुजरात शुरू है तो बाज कहते हैं कि तिवाले मुफस्सल का आगाज अल हुजरात से होता है और बाज ये कहते हैं कि तिवाले मुफस्सल का आगाज सूरत काफ से होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा अंदाज है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन लोगों ने ये कलमा तैयबा पढ़ा, कलिमा तु तक्वा पढ़ा, उनको क्या कहा जाता है? उनका नाम क्या है? कुरानी नाम आमनु, मोमिनून, मुत्तकीन। तो क्या कहा जा रहा है? ए वो लोगो जो ईमान लाने वाले हो, पुकारा जा रहा है, आवाज दी जा रही है, आवाज देने वाला अल्लाह है, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला। अब आम लोगों को मुखातिब नहीं किया गया, बहुत सी सूरतों में या यूहन्नास है ना, आम खिताब है, यहां आम खिताब नहीं है, आप खास हैं। आप जरा तसव्वुर करें अपने अपने कुलूब का, अपने सीनों का, अपने दिलों का जायजा लें कि ए वो लोगों जिन्होंने कलमा पढ़ा है, तुम कलमा पढ़कर कहां रह गए, कहां चले गए? ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान हरकत का नाम है, ईमान अमल को कहते हैं, ईमान कुछ कर गुजरने की कैफियत का नाम है, ईमान तो इनकलाब है, जिंदगियों को बदल देने का नाम है। रात हमारे घर एक न्यू मुस्लिम आया और 18-19 साल उसकी उम्र, वाइट वाइट मुसलमान, और उसने हाई स्कूल के बाद जो है वो यहाँ की कनाडा की फौज में भर्ती हो रहा था और फिर उसने अफगानिस्तान जाना था। तो उसकी इंटरनेट में किसी से बात हुई और जो इंटरनेट में जिसने बात की वो कोई मुस्लिम था और उसने कहा कि ये गलत है ना कि इस तरह जाना और वहां पे सारा। बहरहाल अल्लाह की जात के सदके जाएं, कुर्बान जाएं, वो मुस्लिम जो है मतलब वो जो न्यू मुस्लिम था उसका अब नया नाम उमर है। तो उसने स्टडी किया और उसको उसकी जो जिसने भी इंटरनेट पर चैटिंग के दौरान उससे बात की थी उसको उसकी बात समझ में आ गई। अब जो है अब फिर उसको जिस इलाके में वो रहता था यहाँ से कोई 1000 के करीब माइल्स हैं या बहुत दूर है जैसे यहाँ से, वहां कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मुसलमान नहीं था जो उसको बताता। अब वो इंटरनेट पे स्टडी कर रहा था और उसने सोचा कि मुझे जो है ना अब मुसलमान होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो सेल्फ मुस्लिम, किसी किसी मस्जिद किसी आदमी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, खुद ही स्टडी किया, उसने उसको समझा, उसने कहा कि नहीं। और फिर उसने कहा कि मुझे देर भी क्यों करूं कि मैं मुसलमान होने में देर क्यों करूं, और कहता है कि मैंने कलमा पढ़ लिया। कहते हैं मैंने जब इंटरनेट से या स्टडी जो कर रहा था उससे मैंने जब कलमे को पढ़ना शुरू किया तो अरबी मुझसे पढ़ी नहीं गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश में ही कलमा पढ़ लिया और मैंने कहा कि अल्लाह नोस के मैंने ट्राई किया है और मुझे आता नहीं और मैंने कलमा पढ़ लिया कि मुझे देर ना हो उसके पढ़ने में। और बच्चे बता रहे थे और मेरे शोहर बता रहे थे कि तकरीबन मेरा ख्याल 1 घंटा हमारे घर वो रात को रहे। ऐसी खूबसूरत उसकी बातें कि हर बात वो जो कुरान सुन्नत पढ़ता जा रहा है उसका मताला कर रहा है और उस पर अमल कर रहा है। फिर उसको किसी जगह जॉब मिली तो जहां जॉब मिली वहां नमाज पढ़ने की उसको इजाजत नहीं थी। अब उसने जो है कहा कि नहीं मुझे नमाज पढ़नी है ना। और कहते हैं कि एक जगह एक मुसलमान था फिर जहां पे वो जॉब के लिए गया लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था। और इसने क्या किया, इसने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है और उसके बाद कहता था कि तुम्हारी जो जॉब है तुम्हारा जो काम है वो मैं करूंगा, तुम भी नमाज पढ़ो। फिर उससे इसने दोस्ती की और वहां से हट भी गया, आ भी गया, फिर भी उसके पास जाता था, वॉलंटियर काम करता था, कहता था कि अब नमाज का वक्त है तुम नमाज पढ़ो ना, और वो भी 5 वक्त का रेगुलर नमाज पढ़ने वाला बन गया वो मुसलमान। और मेरे शोहर बता रहे थे कि नमाज के बाद बहुत देर तक बैठकर जो है वो तस्बीह और अज़कार करता है, मतलब जो भी उसने सुन्नत से पढ़ा है जो कुछ समझा है। और फिर उसने जो है वो एक ऐसे सर पर एक कपड़ा सा बांधा हुआ था जैसे पगड़ी टाइप, तो पूछा कि ये क्यों बांधते हो, तो कहा कि असल में मैंने हदीस पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बांधा करते थे। फिर उसने जैसे उसको कह रहे थे कि कुछ दो ना कोई चीज दो, तो मैंने एक वो चुब्बा जो अरब लोग पहनते हैं अरब लिबास, तो मैंने वो निकाला, मैंने कहा आप ये दें। फिर मैंने कहने लगे कि जैसे उसका उतना ही कदा जैसे मास का है, तो मैंने कहा कि हमने मास के साथ लगा के देखा थोड़ा सा उसको जरा छोटा था, तो कहने लगे जाहिद कि ये उसके लिए एक्सीलेंट है क्योंकि वो टखनों को नंगा रखता है, वो सुन्नत का ख्याल रखता है। और अब वो किसी ऐसे मदरसे की तलाश में है जहां वो दीन को स्टडी करे और दीन को समझ सके। और मैं सोचती हूँ कि नेकी भी क्या चीज है। वो तकरीबन 1 घंटे तक रहा और बच्चे और घर वाले सब पर उसकी नेकी के असरात, उसकी बातों के असरात, क्योंकि कोई बात थी वो बना के नहीं कर रहा था, वो जो कर रहा था जो उसने स्टडी किया वो जो है वो अपनी कैफियत जो था वो बता रहा था। मैं बहुत देर उसके ईमान की जो लज्जत थी, हालांकि मैंने तो सुनी अपने घर वालों से उसकी बातें सुनी, तो उसकी लज्जत में मैं डूबी रही कि सहाबा और सहाबियात भी तो ऐसे ही अमल करते थे ना, उनके लिए उनके सामने किसी चीज में कोई शक नहीं था और दोरंगी नहीं थी और पूरे दिल की लगन और जुस्तजू के साथ जो थे वो अमल करते थे। और न्यू मुस्लिम जो है आज मेरे और आपको जो है वो उनका अमल मुझे और आपको एक दस्तक देता है, हिलाता है, शर्माता है। और कहां गए वो मुसलमान जो कुरूने उला के थे, कहां गए वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर लोग कहते थे देव आमदन, कहां गए वो मुसलमान जिन्हें देखकर लोग कहते थे, ईसाई भी कहते थे कि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी महसूस होते हैं, उनकी शान क्या के महसूस होते हैं। आज मुसलमान के कहने में और करने में, सुनने में और बताने में कितना फर्क है। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत लगी उसकी बातें और उसका नमाज पढ़ना और उसका ज़ौको शौक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, और मुझे लगता है ये आयत बार बार पढ़नी चाहिए। और फिर मेरे शोहर कल कह रहे थे कि ये वो जमाना है जिस जमाने में हमारी यूथ जो है वो यहाँ पे आके गुम हो जाती है, वालदैन की कोशिशें, वालदैन की तरबियत एक साइड पर रह जाती है और हमारी यूथ यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की जो चांदनी है और चमक दमक है और पीयर प्रेशर है और कल्चर है, लिबास है, मूवीज हैं, बेहयाई है, हमारी यूथ इसके अंदर आकर मेल्ट हो जाती है, इसके अंदर खो जाती है। और बार बार ये कह रहे थे देखो तो सही कि ये वो जमाना है कि जवानी के उरूज का 18-19 साल उसकी उम्र, और इस उम्र में ये लड़का जो है ये दीन की तरफ आया है। और मेरा अपना बेटा बार बार आके कह रहा था कि मामा ये तो देखें कि उसने सेल्फ स्टडी की और सेल्फ मुस्लिम है, तो वो दीन की तरफ आ गया और हमारी यूथ कहाँ जा रही है ना, यहाँ और दुनिया भर में हमारी जो यूथ है और हम सब मुस्लिम हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे अल्लाह ने उसको इस बात की तौफीक दी। और फिर मैं यही बात सोच रही थी कि हमारा काम कितना ज्यादा है कि हम लोगों को बुलाएं, हम दावा करें अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी बातों से, और डरो डरे नहीं, परेशान ना हो कि दीन हल्का है, दीन बहुत मजबूत कवि और उलू इसकी फितरत में है, गलबा इसकी फितरत में है। आपने पीछे सूरत फतह में भी यही बात पढ़ी, तो असल में अब हमारे किरदार बहुत हल्के हो गए हैं ना, इसलिए हम बात कहते सुनाते बताते जो है ना हमारा वो असर नहीं है, वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। फरमाया ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुकद्दिमू तुम आगे ना बढ़ो, कदम कदम के मानी क्या होता है, कदम आगे रखना आगे बढ़ना, तो ला तुकद्दिमू तुम आगे मत बढ़ो, बैना यदयिल्लाही, बैना आगे सामने के लिए आता है, दरमियान के लिए आता है, तो असल में यदैन था दोनों हाथ, तो दोनों हाथ भी कहाँ होते हैं, आप दोनों हाथों को जरा उठाएं और देखें कि आपका सामने का है ना हिस्सा, तो बैना यदयिल्लाही आगे सामने दोनों हाथों के, तो तुम आगे मत बढ़ो सामने किसके, अल्लाह ही अल्लाह के, तो तुम अल्लाह के आगे कदम मत रखो, व रसूल ही और उसके रसूल के। तो फरमाया जा रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी मत करो, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। आप देखिए कि यहां पर जिस बात को बहुत अहमियत से पेश किया जा रहा है उसमें नंबर 1 अहले ईमान को मुखातिब किया जा रहा है, नंबर 2 उनको कहा जा रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे पेश कदमी मत करो, उनके उनसे आगे मत बढ़ो, और तीसरी बात जो कही जा रही है उनको अल्लाह से डराया जा रहा है कि ईमान लाने वालों तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तो क्या करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से इस तरह से डरो कि वो जो पेश कदमी है, वो जो तुम्हारा आगे बढ़ना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, वो तुम्हारा जो है वो रुक जाए। तो देखते हैं कि क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल कर दिया, वो कौन से हालात थे जिनमें ये सूरत नाजिल हुई, और ये भी याद रखें कि इस सूरत के अंदर जो आयात हैं सारी बयक वक्त नहीं नाजिल हुई बल्कि मुख्तलिफ औकात में नाजिल हुई, और फिर इनको जो है वो मजमून की मुनासबत से जो है वो इकट्ठा जो है वो कर दिया गया, क्योंकि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वजह से जो है इन आयात को नाजिल किया, तो कुछ वाकयात है जो हमारे सामने आते हैं। इनमें से एक वाकया ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों की आवाजें बुलंद हो गई, इब्ने अबी मलिका, इब्ने अबी मलिका कहते हैं कि रसूल अल्लाह के सामने आवाजें बुलंद करने की बिना पर दो नेक तरीन आदमी तबाह होने को थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो, जबकि बनी तमीम का एक वफद 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप इनका कोई सरदार मुकर्रर फरमा दें। इन दोनों में से एक ने अकरा बिन हाबिस की सरदारी का मशवरा दिया, जो बनी मशाजा बनू तमीम की एक शाख थी, उनमें से था, और दूसरे ने किसी दूसरे काका बिन माबद, काफ ऐन काफ अलिफ ऐन, उनके मुतालिक मशवरा दिया। और कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने काका बिन माबद का कि उन्हें अमीर बनाना चाहिए, और हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने अकरा बिन हाबिस के बारे में कहा कि उनको अमीर बनाना चाहिए। अब इसके बाद जो है वो इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों से कहा, उनसे कहने लगे कि आप तो मुझसे इख्तलाफ ही करना चाहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने कहा, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करना चाहता, बल्कि ये मसलहत का तकाजा है। ये ब्रैकेट में लिख लें। इस मामले में दोनों की आवाजें बुलंद हो गई तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल कर दी। और क्यों आयत नाजिल की? ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जो बैठने वाले हैं, आपकी मजलिस में आपका अदब और एहतराम जो है उसको कभी ना भूले। और आयत नंबर एक, और इसके साथ आप इससे अगली भी आयत को देखें तो आयत नंबर एक से लेकर आयत नंबर 5 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, आपका एहतराम, आपकी महफिल का एहतराम जो है वो बताया गया है। इसी तरह एक और वाकया भी मिलता है, और वो कौन सा वाकया है? कहते हैं कि हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस बिन शमास को कई दिन तक अपनी सोहबत में ना देखा। एक शख्स जो है, जब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपनी महफिल में नहीं देखते थे तो आप उदास हो जाते थे, आप परेशान हो जाते थे कि मेरे फलां साहबी मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे। तो आपने जो है वो अपने सहाबा से पूछा कि भी फलां जो है साहबी क्यों नहीं नजर आते। तो एक शख्स साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका हाल मालूम करके आपको बताऊंगा। चुनाचे वो गए तो हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो को अपने घर सर झुकाए देखा। अब उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो सर झुकाए हैं, और पूछा क्या सूरत हाल है? साबित रजी अल्लाह अन्हो कहने लगे, बुरा हाल है, मेरी तो आवाज ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद होती थी, मेरे तो आमाल जाया हो गए और मैं अहले दोजख में से हुआ। अब साद रजी अल्लाह अन्हो जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया कि वो तो ये कुछ कहते हैं। मूसा बिन अंस रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हजरत साबित बिन कैस की बात जो थी वो बताई गई, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनके बारे में क्या कहा? आपने जो है वो फरमाया कि नहीं, बल हुआ मिन अहले जन्ना, कि वो तो अहले जन्नत में से है। फिर जो है कहते हैं कि ऐसा हुआ कि साद बिन मुआज एक बड़ी बशारत लेकर दूसरी बार साबित बिन कैस के पास गए, और आपने खुद हजरत साद रजी अल्लाह को साबित के यहां भेजा, ये भी आता है, और कहा कि उसे कह दो कि तुम अहले दोजख से नहीं बल्कि अहले जन्नत में से हो। ये बुखारी की रवायत है। और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कई दिन आपको अपनी महफिल में ना देखा तो ये भी पूछा क्या वो बीमार है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता था कि वो गैर हाजिर हों। और आप देख लें कि हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो का मामला कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन है कि कुदरती तौर पर आवाज ऊंची है, और अब जिनकी आवाज ही कुदरती ऊंची है वो क्या करे, बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं कि अपने घर में चुपके से बैठ गए कि मेरी तो आवाज वैसे ही कुदरती ऊंची हो जाती थी, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अमाल सारे जाया हो जाएं। और कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हो गई थी ना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनहो इतनी आहिस्ता बात करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे पूछने की जरूरत पेश आती। हजरत उमर रजी अल्लाह अनहो बहुत फिर आहिस्ता आवाज में बात करने लगे, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो के बारे में भी आता है कि वो भी बहुत आहिस्ता जो थे वो बात करने लगे। तो सहाबा कराम के मामलात भी कितने खूबसूरत थे और कितने बेहतरीन थे। और इस सिलसिले में कहते हैं कि इस आयत के नजूल से सहाबा कराम का यह हाल हो गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कसम है अब मरते दम तक आपसे इस तरह बोलूंगा जैसे कोई किसी से सरगोशी करता हो। हजरत उमर रजी अल्लाह इस कदर आहिस्ता बोलने लगे कि बाज औकात दोबारा पूछना पड़ता था। और साबित बिन कैस रजी अल्लाह तबई तौर पर बहुत बुलंद आवाज थे, ये आयत सुनकर वो बहुत डरे और रोए और अपनी आवाज को घटा दिया। अब आप देखिए कि यहां पे जो बात कही जा रही है वो क्या कहा जा रहा है कि ए ईमान लाने वालों, तुम अपने कदम आगे मत रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे कदम ना रखो। मुराद क्या है कि उनसे पेश कदमी ना करो, उनसे आगे ना बढ़ो। और आगे बढ़ने से क्या मुराद है, एक तो होता है कि जाहिरी तौर पर कदम आगे रख देना, तो यहां पे हिस्सी मानी भी मुराद है और उसके साथ साथ कौन से मानी मुराद है, मानवी भी, यानी जाहिरी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी दोनों मानी जो है मुराद हैं। और मुराद ये है कि मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं तो कोई सहाबी आपसे पहले रुकू सजदा ना करे, पहले सलाम ना फेर दे, या आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई आगे बढ़कर जो है आपका वो मकाम ना ले ले। और वैसे सहाबा का तो ये हाल था ही नहीं। तो आज के दौर में भी जैसे रसूल की अतात में जब आगे नहीं बढ़ना तो उलमाए दीन जो हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। तो इसी तरह उलमा ये कहते हैं कि उलमा और मशायख का के बारे में भी यही हुक्म है कि उनके आगे ना बढ़ा जाए, उनकी इज्जत की जाए। इसी तरह जैसे मुक्तदी नमाज में इमाम को फॉलो करे, इमाम से आगे मत बढ़े। तो मानी ये है कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है तो उसको क्या करना चाहिए, अल्लाह को अपना हादी, रसूल को अपना रहनुमा तस्लीम करना चाहिए। अगर वो अपने अकीदे में सच्चा है तो हो नहीं सकता कि वो अपनी राय और अपने ख्याल को, अपनी बात और अपनी मर्जी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले पर मुकदम रखे और वो अपने मामलात में आजादाना राय कायम करे। तो मोमिन के लिए जो है एक बेहतरीन तर्ज अमल ये आयत जो है वो सामने रखती है, और वो ये है कि मोमिन क्या करेगा, कभी नहीं हो सकता कि वो नंबर एक अपनी राय और ख्याल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले पर मुकदम रखे। ला तुकद्दिमु के मानी क्या है कि अपनी सोच और अपनी बात और अपना फैसला उनसे आगे नहीं रखना। दूसरी बात क्या है, मामलात में भी आगे नहीं बढ़ना। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपने मईशत, माशरत, सियासत, हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह के बारे में जो भी जो है वो रहनुमाई की, जैसे अमल करके दिखाया, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई, या इस रिश्ते में कोई आपकी हदायत ही है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई मालूम करने की फिक्र ही ना करे और फिर खुद ही आगे बढ़ जाए। और आप यहां पे देख लें, ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह के भी आगे नहीं बढ़ना, तो यानी कुरान से भी हटकर फैसला नहीं करना, कुरान से भी हटकर नहीं करना, और रसूल से आगे नहीं बढ़ना तो सुन्नत को भी छोड़कर नहीं चलना। तो पेश कदमी ना करो, आगे ना बढ़ो, पीछे पीछे चलो, मुकदम ना बनो से मुराद क्या है, ताबे बनकर रहो। सूरत अहज़ाब की आयत 36 में भी यही बात फरमाई गई कि जिसका معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو، اس کے بارے میں کسی مومن کو خود الگ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ اس کو پھر ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے منطبق کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں جو ہے وہ یہ روایت صحیح سندوں سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو یعنی اجتہاد اگر کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کتاب سنت اس کو مقدم کرنا ہے۔ ایک مسلمان جج اور غیر مسلم جج میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جج جب فیصلہ کرتا ہے قرآن، پھر سنت، پھر صحابہ کی زندگی، پھر خلفائے راشدین کے زمانے کی کوئی مثال، تو مسلمان جج کے سامنے قانون سازی کا پہلا ماخذ خدا کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی سنت، پھر اس کے بعد امت کا اجماع۔ تو ان دونوں کے خلاف بھی نہیں کرتا اور ان دونوں سے آزاد ہو کے بھی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یعنی اسی کو کہتے ہیں قیاس اور پھر اجتہاد۔ تو آج میں اور آپ بھی جو ہے قرآن، حدیث، پھر امت کا اجماع، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے اگر باہر کی دنیا میں آ گئے تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ اجتہاد یا قیاس نہیں کر سکتے۔ تو دین کے اسپیشلسٹ، اور دین کے اسپیشلسٹ کون ہیں؟ جو دین کے علماء ہیں، تو ان سے جو ہے وہ رہنمائی لیں گے، ان سے ہم فتویٰ لیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ان کے مطابق جو ہیں اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، ان کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں۔ مثلا دیکھیں کہ اب سوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہے، کہ کوئی فوت ہو جائے، کوئی عام شخص، خواہ وہ والد ہو، والدہ ہوں، یا اولاد میں سے کوئی ہو، یا دوستوں میں سے کوئی ہو، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ سوگ کیا جائے۔ صرف شوہر کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہے، شوہر کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب اگر کوئی 7 دن، 10 دن، 40 دن، یا پھر اس کے بعد جو ہے برسی، ہر سال جو ہے وہ برسی منائی جائے، تو یہ چیز جو ہے کیا ہے کہ رسول سے آگے قدم رکھنا ہے، اپنی رائے اور اپنے فیصلے رسول کی احادیث اور آپ کی سنت سے ہٹ کر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اور کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نیکی کے شوق میں کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے۔ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ متقی بننا کیا ہے کہ شادی نہ کی جائے، تو یہ چیز بھی کیا ہے کہ یہ چیز بھی غلط ہے، یہ سنت سے نہیں ملتی۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے کیا کہا، میں نکاح بھی کرتا ہوں، ہے نا، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، تو آپ کی سنت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے نکاح آپ کی سنت ہے، جس نے اسے بے رغبتی برتی تو آپ نے اس کو ناپسند کیا، ہے نا۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں اتنا متقی ہے کہ اس نے نکاح ہی نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو متقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ جو ہیں مستقل رات بھر اگر جاگتے ہیں تو کہیں کہ وہ بڑا متقی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، ہے نا، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ یعنی ایک بیلنس لائف جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مثلا आप जब जाती हैं हज और उमरा करने, तो आप जब तवाफ करती हैं कितने चक्कर लगाती हैं? सात। अगर आप में से कोई ये सोचे कि चलो सात नहीं मैं आठ लगा लेती हूँ, एक चक्कर बस ज्यादा है ना, एक चक्कर ज्यादा है, बजाहिर तो नेकी लग रही है ना कि आप तवाफ कर रही हैं, लेकिन क्या है कि ये भी अल्लाह के रसूल से आगे कदम रखना है। सही है। फिर इसी तरह जो है वो दीन के मामलात में, मसलन रमजान का महीना है, अब हमारे बारे में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, और रोजे कितने हैं? एक महीने के रोजे। और ये महीना कहां से पता चलेगा? चांद से पता चलेगा, चांद के मुताबिक, चांद घटता बढ़ता है, कभी 29 दिन का, कभी 30 दिन का, और हमें फिर रसूल अल्लाह की अहदीस इसकी रहनुमाई करती हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि चलो मैं ज्यादा मुत्तकी बनना चाहता हूं, मैं महीने के नहीं बस 2 रोजे ज्यादा बढ़ा देती हूँ, रमजान शुरू होने से 1-2 दिन पहले रोजे रखने शुरू कर दिए, तो ये चीज क्या है? ये अल्लाह के रसूल से और अल्लाह ताला से आगे कदम बढ़ाना है, अपनी मर्जी से फैसला करना है। और फिर और इसी तरह ढेरों मिसालें हैं जो आम जिंदगी से हम अपने सामने ला सकते हैं। मसलन अब आपने सूरत नूर पढ़ी, सूरत अहजाब पढ़ी, उसमें आपको पता चला कि पर्दे के अहकाम क्या है, जेब जीनत औरतों को छुपानी चाहिए, और उसके बाद यानी अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हम ना करें, और अल्लाह के अहकाम अल्लाह ने क्या कहा, रसूल ने क्या रहनुमाई की, इसके बाद भी कोई कहे कि नहीं इतनी भी जो है मुलानी नहीं बन जाना चाहिए और इतना भी पर्दा नहीं करना चाहिए, तो लो भी पर्दा तो दिल का होता है, कोई कहता है आंखों का होता है, फिर अपनी जबान से बहुत सी बातें करना, ये चीज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकाम है और उनकी जो हदायात है उनसे आगे कदम रखना है ना। तो ये आयत जो है ये आयत बहुत ही अहम आयत है इस लिहाज से कि सिर्फ इंफरादी जिंदगी नहीं बल्कि इज्तमाई मामलात में भी जो है इसका इतलाक होता है। दर हकीकत ये इस्लामी कानून की बुनियादी दफा है, ये आयत जो है इस्लामी कानून की बुनियादी दफा है। और किन लोगों को कहा जा रहा है? जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने अल्लाह को अपना रब बना लिया और अल्लाह के रसूल को अपना हादी और रहनुमा बना लिया। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। पहले ईमान लाने की बात है और फिर कहा जा रहा है और अल्लाह से डरो, और अल्लाह से, अल्लाह का डर फिर क्या है कि फिर जो है इंसान अल्लाह जब भी कोई मामला पेश आए, कोई भी मैं और आप काम करना चाहते हैं तो कुरान खोले, फिर रसूल अल्लाह की हदीस और आपकी जिंदगी से रहनुमाई लें। अब मैंने और आपने क्या किया, अपने आप को सुपुर्द कर दिया, सुपुर्दगी, हवालगी, असलम तुले रब्बिल आलमीन, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब एक ही काम है, अब मेरी और आपकी मैं खत्म हो जानी चाहिए, मेरा ये ख्याल है, मैं ये चाहती हूं, मेरा दिल ये चाहता है, लोग ये कहते हैं, फलाह ने मुझे ये कह दिया कि नहीं अगर तुमने जो है वो अलग अलग फंक्शन किया शादी का, इतना खर्चा हो जाएगा, अल्लाह मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, और फिर ये कि लोग रूठ रहे हैं, जब इस्लाम जो है वो को सोसाइटी की और को मुआशरत की जो है इजाजत नहीं देता, एक दीवार खड़ी कर दी, मर्द मर्द हैं, औरतें औरतें हैं, और आपस में जो है महरम और ना महरम की तमीज पैदा कर दी, अब सवाल ही नहीं पैदा होता, हालात कैसे ही अजीब लगते हैं, और लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर एक ही हॉल लिया जाए तो जाहिर सस्ता लगता है, और बाज़ औक़ात फिर शैतान डराता है कि मुफलिस हो जाओगे अगर तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानी, गरीब हो जाओगे, शैतान फिर उन रास्तों से आता है जिससे फौरन सब लोग डगमगा जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक बहन बात कर रही थी कि अगर हम अलग अलग हॉल लें तो पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन अगर हम जो है वो एक ही हॉल लें तो सस्ता बनता है, मतलब वो कायल तो थी इस बात की, लेकिन ये बात कह रही थी और फिर साथ ही कह रही थी कि नहीं अब फैसला कर लिया है कुरान पढ़ने के बाद कि अब अलग अलग करना है, तो फिर आप सोच लें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर अपने पहले दिल को समझाना, फिर इर्द गिर्द वालों को समझाना, और फिर कभी अपने बच्चे कहते हैं कि आपने तो अपनी मर्जी से शादी जैसे आपकी हुई हो गई, अब मेरी बारी आई तो आप दीन को नाफिज करना चाहती हैं, इसलिए कि आपकी अब हैसियत ऐसी है कि आप अपने घर में दीन को नाफिज करें, है ना। हमने पहले समझ नहीं थी, जब समझ आ गई तो अब दीन को नाफिज तो करना ही है। तो किसी की बात जो है वो फिर ऐसे ना हो कि हमारे कदम जो है वो लग्जिश खा जाए या हम डगमगा जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये मदनी सूरतें हैं, मदनी सूरतें आगे नहीं बढ़ने देती। कैसे आगे नहीं बढ़ने देती? मक्की सूरतों में अकायद मजबूत किए गए और मदनी सूरतों में मईशत, माशरत, सियासत, इखलाक, किरदार, लेना देना, जीना सिखाया गया। अब जो है तामीर हो रही है, इस्लामी स्टेट कैसी होगी और शख्सियत के खदो खाल कैसे होंगे, अब उठान हो रही है, इमारत तामीर की जा रही है। इमारत कौन सी? फर्द की इमारत और रियासत की इमारत, और उसकी उठान जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक होगी। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इससे क्या बात पता चलती है? डरो क्यों कहा? कि अब खुद मुख्तारी छोड़ दो, अब जान रखना अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुनता है और अल्लाह तुम्हारी सारे अमलों को जानता है। समी, समी का क्या मतलब है? तुमने दिल में क्या इरादा किया, तुम लोगों से क्या बातें कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। तो अब जो है ऐसा हो नहीं सकता कि तुम जो है वो अपनी मर्जी से जो है कुछ भी जो है वो करो, बल्कि क्या करना है अब तुम्हें जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने खुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो जाना है। अब खत्म हो गई मेरी मर्जी और मेरी मैं। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब आप जरा गिनिएगा, ये भी होमवर्क है कि सूरत में आमनू कितनी दफा आया। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, कहां हो वो लोगों जिन्होंने ईमान लाने का दावा किया है? कहां हो वो लोगों जो कहते हो कि हम ईमान लाए? तो ए ईमान लाने वालों, ला तरफाऊ अस्वातकुम, तुम मत ऊंची करो अपनी आवाजें। रफा बुलंदी के लिए आता है, ला तरफाऊ तुम मत बुलंद करो। क्या मत बुलंद करो? अस्वातकुम, अपनी आवाजें। तो अस्वात सौत की जमा है और मानी क्या है कि तुम अपनी आवाजें बुलंद मत करो। पहले क्या कहा? ऐ ईमान लाने वालों, तुम अपने कदम जो है वो आगे मत रखो, और कदम के अंदर सब कुछ आ जाता है, लेकिन अब आवाज के बारे में खास तौर पे कहा जा रहा है कि तुम अपनी आवाजें बुलंद मत करो। कहां पे? फौका, ऊपर, सऊती नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के अपनी आवाजें ऊंची मत करो। वला तजहरू लहू, और फिर फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज में बात मत करो। वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी, और मत जोर से बोलो लहू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बिल कौली बात करते हुए। कैसे जोर से मत बोलो? का जहरी, जिस तरह जोर से बोलते हो, बादेकुम ले बादिन, तुम में से बाज बाज से, जैसे तुम आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो ऊंची आवाज में बात मत किया करो। क्यों मना किया गया? अंतह बता मालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं। वा अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। आप सोचे तो सही, यही वो आयात हैं कि तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। यही वो आयत है कि जब ये नाजिल हुई तो साबित बिन कैस रजी अल्लाह ने घर में बैठ गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कसम खा ली कि ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, ऐसे बोलूंगा जैसे कोई सरगोशी करता है। और उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो थे, वो भी इतनी आहिस्ता आवाज में बात करने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना पड़ता था, समझ ही नहीं आती थी कि उन्होंने क्या कहा है। तो ये है तकवा, और ये है आयात पर अमल करना, और ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अदब और एहतराम करना। आप देखेंगे पीछे की सूरतों में आप पढ़ चुकी कि हबता अमाल हुकुम के अमाल जाया हो जाते हैं कब, जब कोई कुफ्र करता है। अमाल कब जाया होते हैं, जब कोई शिर्क करता है। कब जाया होते हैं, जब कोई मुर्तद हो जाता है। और यहाँ पे रसूल अल्लाह की के साथ बदतमीजी करना, आपकी गुस्ताखी करना, आपकी बेअदबी करना, आपको तकलीफ पहुंचाना, तो इससे भी जो है वो अमाल जाया हो सकते हैं। वान तुम ला तशऊरून, और तुम्हें इस बात का शऊर भी ना हो। कहते हैं एक मर्तबा उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबी में दो लोगों की आवाज सुनी तो उनको तंबीह की और पूछा कि तुम लोग कहां के रहने वाले हो। मालूम हुआ कि ये अहले ताइफ हैं, तो फरमाया अगर यहां मदीना के बाशिंदे होते तो मैं तुमको सजा देता। अफसोस की बात है कि तुम अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हो और मस्जिद में जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल अल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हो। तो ये कब कहा था उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने कि तुम जो है वो अपनी आवाजें जो है वो बुलंद कर रहे हो मस्जिद में। उस वक्त जो है ऐसा नहीं था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके थे और मस्जिद नबी में जो है वो शोर की आवाज पर जो है वो उम्र फारूक रजी अल्लाह जो है वो नाराज होते हैं। तो क्या बात पता चलती है कि यानी आज के मुसलमान जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद नहीं है तो फिर आपका अदब और एहतराम जो है वो कैसे किया जाए। तो एक तो यही कि हम जो हैं तकद्दम अल नबी से मुराद है कि हम अपने अफाल को आपसे आगे ना करें, ना अपनी बातों को, ना अपनी प्लानिंग को। और रफा सौ से मुराद क्या है कि आवाजें ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दुनिया से गो के जा चुके हैं तो जब मस्जिद नबी में जाएं तो वहां पे शोर करना, धक्के देना, ऊंची ऊंची आवाज में दूसरे को कहना इधर आओ, इधर बैठ जाओ, या ये कि खास तौर पे वो जगह जहां जाकर जो है वो दो रकत नमाज पढ़ना जो है वो कैसे है, जिसने कहा नमाज पढ़ी, रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी, तो अब वहां पे बड़ी धक्कम पेल होती है, झगड़ा, लड़ाई और फिर ऊंची ऊंची आवाज में लोग जो हैं वो एक दूसरे को बाज़ूकात बुरा भला कहते हैं, नाराज होते हैं और धक्के देते हैं, या फिर ये कि ऊंची ऊंची आवाज में बेशक इबादत भी कर रहे हैं और गिरिया है, रोना है और ऊंची ऊंची आवाज में, तो ये क्या है कि ये बेअदबी में आता है। तो आज भी हमारे अमल के लिए फिर क्या उसूल मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम आपकी जिंदगी में था और जबकि आप दुनिया से जा चुके हैं तो तब भी आपकी कब्र के पास बुलंद आवाज से बात नहीं करनी चाहिए, ना सख्त लबो लहजे को इख्तियार करना चाहिए, और बल्कि वकार, सुकून, ताजीम और अदब का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। क्यों ऐसा हम करें, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो। अंतुम ला तशऊरून, शीन ऐन रा के मानी आपको पता ही है, बाल को कहते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं बाल कितना बारीक होता है, और इसके फिर मानी क्या है कि तुम्हें एहसास भी ना हो, जैसे बाल की बारीकी का एहसास नहीं ना होता, तुम्हें एहसास भी ना हो, तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम्हें खबर भी ना हो तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाए। तो याद रखिए कि दीन में रसूल अल्लाह की अजमत का क्या मकाम है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी जो है उसकी सजा वही है जो कि कुफर की सजा है। ये खास बात है कि इंसान की उम्र भर की कमाई जो है वो जाया हो जाए, जरा सी कमी रसूल अल्लाह की के एहतराम में की जाए, आपकी अदब में की जाए। क्यों? इसलिए कि रसूल अल्लाह का एहतराम दरअसल अल्लाह का एहतराम है, आप अल्लाह के एम्बेसिडर थे, आप अल्लाह के रसूल बनाकर अल्लाह ने आपको भेजा, तो आपके एहतराम और अदब में कमी नहीं हो सकती। फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम, बेशक जो लोग पस्त रखते हैं अपनी आवाजें, गैन दुआद दुआद, इसके मानी क्या होते हैं, ये लफ्ज नजर और आवाज दोनों के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल होता है, गज़े बसर है ना। गज़े बसर आपने कहां पढ़ा था? सूरत नूर में। और यहां पे क्या है? गज़े सौत की बात आ रही है, पस्त रखना, नीचे रखना। बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाजों को, इंदा रसूलुल्लाह, पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाया जा रहा है कि जो लोग रसूल अल्लाह के हुजूर बात करते हुए अपनी आवाज पस्त रखते हैं, ये कौन लोग हैं? उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लाजीना, जिन लोगों को इम्तहान अल्लाहू, जांच लिया है अल्लाह ने, कुलूबहुम, इनके दिलों को, लितकवा, तकवा के लिए। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। तो यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इम्तहाना, और इम्तहाना के मानी क्या है? इम्तहाना के मानी होते हैं कि ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है अखलसा, अखलसा इसके मानी है इम्तहान। तो अखलसा इम्तहाना के क्या मानी है? जैसे सोना और चांदी को जब आग पर पिघलाया जाता है तब भी इम्तहाना लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इब्तला भी होता है ना, इसी तरह इम्तहाना भी होता है। तो इम्तहाना के मानी इम्तहान है, और इम्तहान का लफ्ज तो बहुत ज्यादा आप बोलती हैं, आपके आए दिन इम्तहान ही होते रहते हैं, और छोटी उम्र में तो दिए ही थे जब जमाना था तालिबे इल्मी का, और अब भी आप तालिबे इल्म बन गए तो इम्तहान देते रहते हैं। तो इम्तहाना का मानी होता है आजमाइश, और आजमाइश क्या है कि जैसे आग पर चांदी या सोने को रखा जाए, फिर इतना ज्यादा उसको गर्म किया जाए कि वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद उसकी शक्ल तब्दील होकर ये पता चले कि खरा क्या है और खोटा क्या है। तो खालिस करना अखलसा के मानी में है कि पिघलाकर खालिस कर लेना। तो जब कोई आजमाइश में डाला जाता है तो उसके मानी ये हैं कि फिर अल्लाह ताला उसको जो है वो खालिस करना चाहते हैं। इम्तहान या आजमाइशें जो हैं वो किस लिए आती हैं? ताकि अल्लाह ताला उनको जांचे और फिर उनको जो है वो खालिस कर लें। तो दरअसल यहां पर ये लफ्ज जो आया है वो इसलिए आया है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुन लिया है। बाज कहते हैं कि इम्तहाना का लफ्ज यहां पे अखलसा के मानी में है, और बाज कहते हैं इस्तफा के मानी में है। और इस्तफा के मानी भी क्या होते हैं? कि किसी को किसी की पाकीजगी की वजह से चुन लिया जाए। तो लोग क्या कहते हैं कि हमें तो बहुत ज्यादा आजमाइश में डाल दिया गया, हमारे साथ तो बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो ज्यादा और कमी की बात नहीं है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आजमाइशें आती हैं जांचने के लिए। अल्लाह ताला जो है हर दिले तकवा की जो है वो आबियारी नहीं करता, मतलब हर शख्स दावा कर सकता है तकवा का, लेकिन अल्लाह ताला तकवा का बीज उसी दिल में जो है लगाता है, उसकी तुखमरेजी करता है, उसको उसकी अफजाइश करता है जो तकवा के लिए मौजू हो, मुंतख बेहतरीन हो। तो अल्लाह ने ऐसे दिलों का इंतखाब कर लिया है जिनका इम्तहान लेना है। तो ऐसे दिलों का इंतखाब करके उनको तरजीह दी है, अखलसा, अखलसा इस्तफा। और तरजीह क्यों दी है? और अल्लाह ताला इसलिए तरजीह देते हैं कि आदमी के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात का सच्चा जज्बा है कि नहीं, और उनके आगे जो है वो उनकी उनका इत्तबा करना, और उनके आगे फरोतनी का क्या मतलब होता है? आजी इख्तियार करने का कितना जज्बा है। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा ये जज्बा होता है ना अतात का और सुपुर्दगी का, उतना ही ज्यादा उसको ये नेमत मिलती चली जाती है। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि जो शख्स जो है वो ये चाहता है कि उसके अमाल जाया ना हो, तो वो क्या है कि बेशक अल्लाह ताला ने उन लोगों को इम्तहान के लिए चुन लिया है जो अपनी आवाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बात करते पस्त रखते हैं। तो फिर उनके इनामात बताए जा रहे हैं, उनकी फजीलत बताई जा रही है, क्या कि चुन लिए हैं? नंबर एक, उनको कुलूबहुम लितकवा, उनके दिलों को तकवा के लिए। तो जो अपनी आवाजें नीची रखेंगे रसूल अल्लाह से बात करते हुए तो उनके दिलों में तकवा बढ़ता चला जाएगा। नंबर दो, लहुम मगफिरतुन, उनके लिए मगफिरत है, और कितनी बड़ी बात है कि जो भी कमी बेशी हो गई तो उसको माफ कर दिया जाएगा। और नंबर तीन, वह अजरुन अजीम, और उनके लिए जो है बहुत बड़ा अजर है, उनको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जो है वो इनाम देगा। तो यहां पे जाहिरी तौर पर भी आवाज को ऊंचा रखना और दिल के अंदर भी कि अपने फैसले को, अपनी राय को, अपने ख्याल को रसूल अल्लाह की बात और हदीस से जो है वो अहम समझा जाए या बालातर समझा जाए। जैसे बाज लोग जो बाहर की दुनिया में आ गए हैं, मगरिब की दुनिया में, वो क्या कहते हैं, यहां पे कुरान नहीं चल सकता, यहां पे हदीस नहीं चल सकती, यहां पे सुन्नत की पैरवी नहीं हो सकती, पुराने जमाने की वो अहदीस हैं और बातें हैं। और ये क्या हर बात में आप काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में बात याद रखें कि यहां पर अल्लाह ताला एक तरफ इनामात का जिक्र करते हैं, एक तो ये किरदार है कि जो ही पता चला कि अपनी बात राय को और अपने अमल को रसूल अल्लाह और अल्लाह से आगे नहीं बढ़ाना, तो सहाबा का तर्ज अमल कैसा निकला। इससे एक बात बहुत तसल्ली देती है कि रसूल अल्लाह के सहाबा फरिश्ते नहीं थे, इंसान थे, उनसे कमी बेशी हो जाती थी, लेकिन कमी बेशी होने के बाद जब उनके सामने कुरान की आयत और हदीस आती थी, अल्लाह के रसूल की कोई बात और अमल आ जाता था, फिर उनका रवैया कैसा होता था, फिर वो अपने आप को बदल लेते थे मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना, गलती हो जाती थी फिर वो अपनी इस्लाह कर लेते थे। हजरत जो है वो, ये सहाबा के बारे में मैंने कहा आपको, साबित बिन कैस, हजरत उमर, हजरत अबूबकर, तो उनमें इख्तलाफ भी होता था, ये बात ही हमें पता चली। इख्तलाफ तो इख्तलाफ का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी राय को तरजीह देना, ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देना, ये बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, है ना। फिर क्या है कि फिर अपने आप को तब्दील कर लेना, लेकिन ये कि अड़ जाना कि मैं ही ठीक कह रही हूं, मेरी बात ही ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। फिर आप देखें कि यहां से उलमा ने ये उसूल भी निकाला है कि ये जो अमल करना है, जो अपनी बात जो है वो रसूल अल्लाह की बात से आगे नहीं बढ़ानी और अल्लाह की बात कुरान से आगे नहीं बढ़ानी, तो ये अदब एक तरफ रसूल अल्लाह की महफिल के लिए है, दूसरी तरफ आपसे बात करते हुए, तीसरी तरफ आपकी जिंदगी के बाद आपकी मस्जिद में जब जाएं तो वहां पे भी इसका ख्याल रखना है। अच्छा, चौथी तरफ वो ये कहते हैं कि यहां पे जो अदब सिखाया गया है, जो अदब बताया गया है, तो ये अदब उलमा और असातजा के लिए भी है। उलमा और असातजा जो है उनका भी बड़ा मकाम है। और आप देखें कि कुरान में कहीं भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिया गया है, तो जैसे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, आपको जब मुखातिब किया गया तो कैसे, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल, तो चार जगह आपका नाम तो लिया गया है, नाम तो आया है आपका, लेकिन आपको आपके अलकाबात से जो है मुखातिब किया गया, जबकि दीगर अंबिया को हमें ये मिलता है कि या मूसा और या ईसा या दाऊदू, उनके नाम से भी जो है हमें मिलता है। फिर दूसरी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रसूल अल्लाह का नाम नहीं पुकारते थे, क्या कहते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और इसी तरह खुल्फाए राशिदीन का भी अदब क्या से किया जाता था, उनको क्या कहा जाता था, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अपने से जो बड़े हैं या फिर असातजा है, उलमाए कराम है, उनका भी अदब करना चाहिए, उनका नाम पुकारना, उसकी बजाय जो हमसे बड़े हैं तो उनको जो है वो अदब से पुकारना चाहिए। इसी तरह अपने असातजा को भी, उनको जो है जो बुजुर्ग हैं उनको और असातजा को जो है अदब से हम पुकारेंगे, मुख्तलिफ तरीके से फिर हम उनको पुकार सकते हैं कि आपा, आपी, बाजी, या फिर उस्ताजा, है ना, या फिर उस्ताद, क्योंकि जिससे भी सीखा है, एक जो है वो वालदेन का अदब करना और फिर उसके बाद उस्तादों का अदब करना, ये बहुत अहम है और बादब बानसीब होता है, बादब बानसीब होता है। और पता है, मैं ये जो मेरा ख्याल है इमाम मालिक या इस तरह के किसी बुजुर्ग के बारे में पढ़ रही थी कि वो अपने असातिज़ा का इतना अदब करते थे वो लोग, कि वो अल्लाह से ये दुआ करते थे कि हमारे उस्तादों का कोई ऐब हमें पता ना चले, कि उनके अदब में हमसे कोई कमी ना हो जाए, इतना अदब करते थे। और ये भी मिलता है जैसे जो है वो चेहरा सुर्ख हो जाता था उस्ताद के अदब की वजह से, चेहरा सुर्ख हो जाता था। और इसके अलावा और क्या कि अदब में फिर ये भी लिखते हैं जो उलमाए दीन है, कैसे अदब करना है कि जैसे उनकी जो जगह है उस पर बैठा ना जाए, जैसे कुर्सी है या उनकी कोई जगह मुकर्रर है तो उस पर बैठ जाना, या फिर उनके साथ बदतमीजी से बात करना, या कहना कि मतलब हमें ज्यादा पता है, इनको क्या पता। हो सकता है कि बाज़ औक़ात हो सकता है कि एक तालिबे इल्म को ज्यादा पता हो, लेकिन बात करने का एक अंदाज होता है कि कैसे बात आप कर रहे हैं ना, हम कैसे बात कर रहे हैं। तो जितना कोई बाअदब होता है उतना ज्यादा वो इल्म जो है वो सीखता है। फिर इसी तरह जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका अदब और एहतराम करना, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, हो सकता है वो इल्म में कम हो लेकिन उम्र में बड़े हैं, तो उनकी उम्र की वजह से उनके साथ गुफ्तगू करते वक्त ऊंची आवाज में बात ना की जाए, उनका अदब एहतराम उसका ख्याल रखा जाए। और आजकल आप देखें कि बुजुर्गों का भी एहतराम नहीं है, उस्तादों का भी नहीं है और बुजुर्गों का भी एहतराम नहीं है। सब लोगों को अपने लेवल पर लाकर जब हम बात करते हैं और कहते हैं कि लो जी वो पहले जमाने गए, अब तो बड़ी बेतकल्फी है, तो इल्म भी जो है वो कम से कम तर होता चला जा रहा है। वो अदब नहीं है तो वो तहजीब नहीं है और वो किरदार नहीं है जो कि मतलूब है। फिर इसी तरह जैसे उल्मा है, बाज उल्मा हो सकता है कि उम्र में हमसे छोटे हों लेकिन इल्म में और अमल में वो हमसे बहुत बड़े हों, तो उनका अदब और एहतराम करना हम सबकी जो है वो जिम्मेदारी बनती है। तो आम दोस्तों के मकाम पर उनको न लाएं, बल्कि क्या है कि उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, ये हम सब के लिए जो है वो जरूरी है। तो इस सिलसिले में जो है हमारे सामने वैसे बहुत से ऐसे अहकाम आते हैं कि जैसे अल्लाह ताला का भी अदब करना है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे अपने कदम ना बढ़ाओ, तो अल्लाह का अदब कैसे करना है कि हम अपनी जबान से अल्लाह की हमदो सना बयान करें और उस तरह करें जो उसके इस्तेहकाक और शान के मुताबिक हो। और अल्लाह का अदब क्या है कि हमारे अजा उसकी अतात के कामों में लगे रहें। जैसे अल्लाह ताला जो है वो क्या फरमाते हैं सूरत इब्राहिम में, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। फिर इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरत नूह में, सूरत नूह की आयत 13 और 14 में, मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि इसने तुमको मुख्तलिफ हालात में पैदा किया है। और फिर अल्लाह का अदब हम क्यों ना करें, सूरत तगाबुन, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, है ना। तो क्या करना है, अल्लाह का अदब करना है ना। फिर इसी तरह सूरत हूद आयत 56 में आता है, मा मिन दाबतिन इल्ला हुआ आखिज़ुम बिनासियतिहा, अल्लाह जमीन पर रेंगने वाली हर चीज को चोटी से पकड़े हुए है। जरा देखें तो सही कि हम भाग नहीं सकते, उसकी ताकत और कुवत और तसर्रुफ का अंदाजा तो लगाएं, चोटी हमारी अल्लाह के हाथ में है। तो क्या करें, कहां जाएं, फिरू इला इन्नी लकुम मिनहु नजीरुम मुबीन, सूरह ज़ारियात आयत 51 और 50। तो 50 और 51 में हमें ये बात पता चलती है कि हमें क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह का अदब और एहतराम करना है। और अदब और एहतराम में इन सारी बातों का निचोड़ फिर किस सूरत में आता है कि नाफरमानी जो है सोचा भी नहीं जा सकता अल्लाह की नाफरमानी के बारे में, और अल्लाह की अतात जो है बस एक ही है कि हम सब अल्लाह के अतात गुजार बंदे बन जाएं। फिर इसी तरह आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करना, और अल्लाह का अदब और एहतराम करना जैसे सूरत नूर में पढ़ा, सूरत नूर आयत 63, ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम कदुआ इबादकुम बादा। फिर इसी तरह जो है आप सूरत हशर में पढ़ेंगी आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। تو ہمیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف زبانی دعویٰ نہیں کر سکتے ربیع الاول کا مہینہ منا کر، بلکہ جس شخص کی زندگی میں اطاعت رسول جتنی زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ ادب اور احترام کرتا ہے۔ تو زبانی محبت مطلوب نہیں ہے، تو پھر کیا کیا کرنا ہے؟ آپ کی عزت، آپ کی توقیر اور تعظیم، آپ نے پیچھے بھی پڑھا نا سورت فتح میں، سورت فتح میں کہ آپ کی عزت کرنی ہے، آپ کا ادب کرنا ہے، آپ کا احترام کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اہم ہیں کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، ہم آپ کا ذکر محبت سے کریں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم نیکیوں میں جو ہے وہ آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہمیں آپس میں کیا کرنا ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ادب کرنا ہے۔ تو بہت سی ایسی حدیث ہے جسے اور پتہ چلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے عمل کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 4 جو ہے اس کا شان نزول ہے، اور شان نزول جو ہے وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آنے کے بعد ان کا رویہ کیسا تھا، ان کا معاملہ کیسا تھا کہ باہر ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے پکارنے لگے اور کہنے لگے، کیا کہا؟ یا محمد اخرج الینا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ آرام کر رہے تھے اور زور زور سے چلانے لگے، یا محمد اخرج الینا، ہماری بڑی اچھی شہرت ہے اور ہماری بڑی بڑائی ہے۔ یہ بدو تھے، غیر مہذب اور اجڑ قسم کے لوگ، تو بات کرنے کا سلیقہ تو آتا نہیں تھا اور نہ ہی گھر سے کہ باہر آپ کو کیسے بلایا جائے، اور پھر یہ کہ وقت کون سا ہے، تو بس جو ہے، اور تھے ایسے کہ کہتے ہیں کہ غالباً مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اپنے قبیلے کے جو تھے وہ بڑے لوگ تھے، یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بنو تمیم کے لوگ جو تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہیں ہمارے لیے ایک سردار کا تقرر کر دیں، تو اس لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کے لیے سردار کا تقرر کر دیں۔ تو کہا کہ آپ جو ہیں وہ باہر نکلیں، تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا انداز جو تھا وہ صحیح انداز نہیں تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذوی الاضداد میں سے ہے، شابش، اور آگے پیچھے اوپر نیچے ہر معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وراء الحجرات سے مراد حجرات کے پیچھے یا پھر حجرات کے باہر، اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی، تو حجرات کے باہر سے پکار رہے تھے۔ اور حجرات جو ہے یہ کیا ہے، یہ جمع ہے حجرہ کی، حجرات ان کی جمع ہے، اور حجرات سے مراد کیا ہے، حجرات کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اصل لغت میں حجرہ ایک چار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن ہو، کچھ جو ہے وہ مسقف عمارت ہو، یعنی اوپر چھت سے بھی بنی ہو، سقف چھت کو کہتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات مدینہ میں 9 تھی، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک حجرہ الگ الگ تھا جن میں آپ باری باری تشریف لے کے جاتے تھے۔ اور یہ حجرات کیسے حجرات تھے، حجرات الامہات المومنین کے بارے میں ابن سعد نے ایک روایت جو ہے عطا خراسانی سے نقل کی ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ آپ سادگی دیکھیں، اور وہ بادشاہ جو دو جہاں کا ہے، آپ اس کے جو ہے وہ حالات دیکھیں، اس کا قناعت دیکھیں اور ان کا فقر دیکھیں، ان کا فاقہ دیکھیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد میں جو ہے وہ روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، گویا کہ امام بخاری کے زمانے میں یہ موجود تھے، کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی ہے، میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازے سے مسقف بیت تک یعنی چھت تک 6-7 ہاتھ ہوگا، یعنی حجرہ جو ہے حجرے کے دروازے سے چھت تک 6-7 ہاتھ ہوگا، اور بیت یعنی کمرہ 10 ہاتھ، اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ ہوگی، اور یہ حجرات امہات المومنین کے موجود رہے کب تک؟ ولید بن عبد الملک کی حکومت میں، اس کے زمانے تک موجود رہے، یہاں تک کہ ولید بن عبد الملک نے، بنو امیہ کا یہ دور ہے، اس نے ہی پھر حکم دیا کہ یہ گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے، تو جب یہ مسجد نبوی میں شامل کیے گئے، کہتے ہیں مدینے میں اس روز لوگوں پر گریہ اور بکا طاری تھا، لوگ بہت مدینے کے رو رہے تھے، ایک یادگار تھی نا، آج یہ یادگار جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور آپ مسجد نبوی میں جاتی ہیں، مدینہ میں جاتی ہیں، میں جب اپنے والدین کے ساتھ جب عمرہ کیا تو اس وقت 6ویں 7ویں پڑھتی تھی، اور یہی زمانہ تھا شاید 76-75 اس زمانے میں جب عمرہ کیا، اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ جو ہے جہاں پہ سعی کرتے ہیں، سعی کہاں کرتے ہیں، کن پہاڑیوں کے درمیان؟ صفا مروہ کے درمیان، تو وہ بھی کافی تھی، نظر آتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ آپ بس ایسے ہی ہے جیسے نشان ان کے باقی ہیں، اور مطلب وقت کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں نا، تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس زمانے میں جب یہ حجرات کو اٹھایا گیا تو مدینہ، پورے مدینے کے لوگ جو تھے بہت اداس تھے اور رو رہے تھے نا کہ آج یہ نشانی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، تو بہرحال مقصود کیا ہے کہ اب یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے باہر سے پکارنا شروع کیا، اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، تو دراصل یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، کہا ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، اور اگر یہ کہ وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو یہ ادب اور تہذیب اور تمدن سکھایا گیا کہ آپ کے اوقات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے، آپ کا احساس رکھا جائے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی، تھکا دینے والی مصروفیات کے دوران آپ تھوڑا سا وقت نکالتے تھے آرام کرنے کے لیے، اور سارا وقت آپ کا ہوتا تھا اہم مشغولیات کے لیے، کبھی آپ باہر دعویٰ کے لیے مصروف ہوتے تھے، کبھی صحابہ کی تربیت، کبھی اوس اور خزرت کے جھگڑے چکانا، کبھی ارد گرد کے علاقوں سے جو ہوتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے، اور پھر تھوڑا سا وقت ہوتا تھا کہ خانگی زندگی کے لیے، گھریلو ضروریات کے لیے، تو اب اس میں بھی آپ کو باہر آنا پڑتا تھا، اور آپ باہر آتے تھے، آپ اپنے بارے میں ذرا تصور کریں آپ کا کیا حال ہے، آپ کتنی مصروف ہیں، میں کتنی مصروف ہوں، اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تھوڑا سا وقت آرام کے لیے رکھا تھا، اس میں کسی کا فون آ جائے اور وہ فون جو ہے بے شک آپ نہیں سن رہے، بس اس کی بیل بھی بہت تکلیف پھر دیتی ہے کہ بجتا چلا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ باہر کے گھر کے دروازے پہ کوئی بیل دیتا چلا جائے، اور ہر ایک کے اوقات آرام کے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی مصروفیات کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو اب لوگوں کا کیا حال تھا کہ جب وہ دیکھتے ارد گرد سے بھی بدو مختلف، اب آپ سوچیں کہ سورۃ الحجرات ہے اور جو ہے وہ مدنی دور ہے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت سے وفود آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی مال غنیمت ملے، تو آپ کے پاس آ کر جو تھے وہ کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ بتائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور تاکہ آپ جو ہے آپ کی نظروں میں ایک مقام آئے، تو بہرحال اب وہ آپ کی محفل میں جب آپ کو دیکھتے کہ آپ کے پاس ملنے آئے ہیں، آپ کو اپنی محفل میں موجود نہ پاتے، تو بجائے اس کے کہ باہر آنے کا انتظار کرتے، بغیر انتظار کے کیا کرتے کہ آپ کے حجرات کے باہر سے آپ کو اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتے، اور کہتے یہ بھی آتا ہے कि ये भी करते बाज औकात के अजवाज मोतारात के हुजरों के का चक्कर काट कर बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देते। ऐसे कई वाकया जो है वो मिलते हैं और जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती थी, मगर अपने तबई हिल्म की वजह से आप उनसे कुछ नहीं कहते थे और क्या करते थे कि आप बर्दाश्त करते चले जा रहे थे। और अब यहां पर अल्लाह ताला ने जो है क्या कहा कि बजाय इसके कि चक्कर लगाएं और बार बार पुकारें और बुलाएं, सब्र करें और आपके बाहर आने का जो है वो इंतजार करें। तो आप देख लीजिए कि यहां पर जो बात बताई जा रही है कि चश्मा फैज की कदरदानी करें ताकि सैराब हो सके सही तरह, और अगर चश्मा फैज की कदरदानी न की तो फिर क्या होगा, फिर सैराब होने की बजाय जो है महरूम हो जाओगे। पाना तो दूर की बात है, फिर ऐसा ना हो कि कुछ खो ही बैठो। तो ये है असल बात। तो फिर आज के दौर में भी अगर हमें हमारी कुछ उलमा से या कुछ ऐसे लोगों से जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, तो हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये आज जो है ये आयात और इनके अहकामात बड़ी वुसअत रखते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं, और ये वो आयात है जो हमें बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह अदब और एहतराम करना चाहिए, कैसे आपकी अजमत और जलाल का ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकामात हैं उनको अपनी जिंदगी में जो है वो नाफिज करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ एक अहम बात के जो हमसे बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं या मर्तबे में मकाम में बड़े हैं, तो हमें उनका भी अदब और एहतराम जो है वो करना चाहिए।